जमुना तेरा बनचारी, जमुना तेरा बनचारी, जय Krishna, Krishna, Krishna. हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता से पाठ अध्याय स्कंद 7 अध्याय 14 श्लोक संख्या 18। तस्माद् ब्राह्मण देवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः तैस्ते हि कार्य तेस्ते कामैर्जजस्वेनम् क्षत्रज्ञं ब्राह्मणाननु तस्माद् ब्राह्मण देवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः तैस्तैः कामैर्जजस्वेनम् क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणाननु तस्माद् ब्राह्मण देवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः तैस्तैः कामैर्जजस्वेनम् क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणाननु। बोलिए। बोलिए।
तस्माद्
તસ્માત અતએવ બ્રાહ્મણ દેવેશુ બ્રાહ્મણો તથા દેવતાઓં કે માધ્યમ સે મર્ત્યાદિષુ સામાન્ય મનુષ્યો તથા અન્ય જીવો કે માધ્યમ સે જથા અર્હત અપની સામર્થ્ય કે અનુસાર તેહી ઉન સભી કામેહ ભોગ કી વિવિધ વસ્તુ હશે યથા ભવ્ય ભોજન પુષ્પ કી માલા ચંદન આદિ છે જજસ્વ પૂજા કરે એનમ ઇસ ક્ષેત્રજ્ઞમ સભી પ્રાણીઓ કે હૃદય મેં વાસ કરને વાલે પરમેશ્વર કો બ્રાહ્મણાન બ્રાહ્મણો કો અનુ ઉસકે પશ્ચાત અનુવાદ તાત્પર્ય ઔર ભાવાર્થ શ્રીલ પ્રભુપાદજી કે દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદ કી અતેવ હે રાજન સર્વપ્રથમ બ્રાહ્મણો તથા દેવતાઓ કો પ્રસાદ પ્રદાન કરો ઔર જબ ઉએ ભલી ભાંતિ ખા ચુકે તો તુમ અપની સામર્થ્ય કે અનુસાર અન્ય જીવો કો પ્રસાદ બાંટો ઇસ પ્રકાર તુમ સભી જીવો કી અર્થાત પ્રત્યેક જીવ કે અંદર સ્થિત પરમ પુરુષ કી પૂજા કર સકોગી મેરે પીછે દોહરાયેંગે અતેવ હે રાજન સર્વપ્રથમ બ્રાહ્મણો તથા દેવતાઓ કો પ્રસાદ પ્રદાન કરો ઔર જબ ઉએ ભલી ભાંતિ ખા ચુકે તો તુમ અપની સામર્થ્ય કે અનુસાર અન્ય જીવો કો પ્રસાદ બાંટો ઇસ પ્રકાર તુમ સભી જીવો કી અર્થાત પ્રત્યેક જીવ કે અંદર સ્થિત પરમ પુરુષો કી પૂજા કર સકોગે તાત્પર્ય સમસ્ત જીવો કો પ્રસાદ બાંટને કી વિધિ યહ હૈ કે સર્વપ્રથમ બ્રાહ્મણો તથા વૈષ્ણવો કો પ્રસાદ દિયા જાતા હૈ ક્યોંકી દેવતાઓ કા પ્રતિનિધિત્વ બ્રાહ્મણ કરતે હૈ ઇસ પ્રકાર સબકે હૃદય મેં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કી પૂજા હો જાયેગી પ્રસાદ અર્પિત કરને કી યહ વૈદિક વિધિ હૈ જબ ભી પ્રસાદ વિતરણ ઉત્સવ મનાયા જાતા હૈ તો સર્વપ્રથમ બ્રાહ્મણો કો પ્રસાદ દિયા જાતા હૈ ફિર બચ્ચો ઔર વૃદ્ધો કો તબ સ્ત્રીઓ કો ઔર અંત મેં કુત્તો તથા ઘરેલુ પશુઓ કો દિયા જાતા હૈ જબ યહ કહા જાતા હૈ કી પરમ પુરુષ નારાયણ પ્રત્યેક હૃદય મેં સ્થિત હૈ તો ઇસકા અર્થ યહ નહીં હોતા કે પ્રત્યેક વ્યક્તિ નારાયણ બન ચુકા હૈ યા કોઈ દરિદ્ર વ્યક્તિ નારાયણ બન ગયા હૈ યહાં પર એસે નિષ્કર્ષ કો અસ્વીકાર કિયા ગયા હૈ ઓમ અજ્ઞાનતિમિરંધસ્ય જ્ઞાનમ જનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિતમ જેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ શ્રી ચૈતન્યમનભીષ્ટમ સ્થાપિતમ જેન ભૂતલે સ્વયં રૂપઃ કદા મહ્યં દદાતિ સોપદાંતિકમ વંદે અહં શ્રીગુરુઃ શ્રીયુત પદકમલં શ્રીગુરૂન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગ્રજાતં સહગણા રઘુનાથાનિતં તં સજીવં સાદ્વૈતં સાવધૂતં પરિજનસહિતં કૃષ્ણચૈતન્યદેવં શ્રીરાધાકૃષ્ણપાદાન સહગણા લલિતા શ્રી વિશાખાનિતાંશ્ચ નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినీతి నామినే నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదే పాశ్చాత్యదేశతారిణే హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తుతే తప్త కాంచనే గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవీ ప్రణమామి హరి ప్రియే వంశాకల్పతరుర్భ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవార్షాదే శ్రీ గౌర్భక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ. सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम कक्षा में यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव के चरण में प्रणाम निवेदन करता हूँ और कुछ भूल त्रुटि हो तो हमें क्षमा कीजिएगा. प्रसंग इस प्रकार चल रहा है कि श्रील नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर से आदर्श पारिवारिक जीवन के बारे में बता रहे हैं. कई दिनों से प्रसंग चल रहा है. अभी जो वर्तमान जो प्रसंग चल रहा है कोई बातें उन्होंने बताए हैं इस अध्याय में. श्रील नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से बताते हैं कि जो परमेश्वर भगवान है सर्व यज्ञ भ्रूक है, यानी सभी यज्ञों को वो उपभोक्ता है. जैसे भगवती गीता के हम छठा अध्याय का पांचवा अध्याय का अंत में हम पढ़ते हैं भुक्ता रंग यज्ञ तपसांग सर्वलोक महेश्वरम, कि भगवान श्री कृष्ण समस्त यज्ञों और तपस्याओं का एकमात्र भोक्ता है. तो यज्ञ में जब हम आहुति डालते हैं उत्तम मैंने शुद्ध घी जो और सारे विभिन्न सब फल विभिन्न सामग्री और सब डालते हैं तो अग्नि जो है माध्यम है, पत्नी जो है स्वाहा है, हम स्वाहा करते हैं तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं. अग्नि के माध्यम से एक मुख है अग्नि जिसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यज्ञ में अर्पित वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, यज्ञ भोक्ता है. परंतु भगवान का और एक मुख है, वह है ब्राह्मण. जब उत्तम ब्राह्मण को जो ब्राह्मण उनके भौतिक संपत्ति के प्रति कोई लालसा नहीं है और काम क्रोध लोभ मोह इन सारे जो अनर्थों से दूर है और एकमात्र ब्रह्म से मतलब है, भगवान से मतलब है. हम जैसे सुनते हैं दुर्गाशा मुनि के प्रसंग है, दुर्गाशा मुनि जैसे गोपियों से विभिन्न प्रकार के भोजन वस्तु ग्रहण किए और जब गोपियों ने पूछे कैसे हम जमुना पार करेंगे तो दुर्गाशा मुनि बोले आप लोग आए थे कैसे, तो उन्होंने बोले कि हम तो इस प्रकार कृष्ण ब्रह्मचारी है, हमें जमुना मैया से बोलकर आए थे तो कृष्ण जमुना मैया ने हमें रास्ता छोड़ दिए दे दी. तो दुर्गाशा मुनि बोले कि आप लोग बोलिए कि दुर्गाशा अनाहारी है, जबकि दुर्गाशा मुनि को बहुत सारे व्यंजन वस्तुएं प्रसाद वगैरह खिलाए गोपियों ने, इसलिए गोपियाँ गए थे दुर्गाशा मुनि के पास. तो दुर्गाशा मुनि बोले कि बोलो अगर दुर्गाशा ब्रह्मचारी है हे जमुना मैया हमें रास्ता दे दीजिए. तो दुर्गाशा मुनि के कहने पर गोपियाँ ने जमुना मैया से प्रार्थना की कि हे जमुना मैया दुर्गाशा निराहारी है, अगर दुर्गाशा निराहारी है तो हमें रास्ता दे दीजिए. तो जमुना मैया ने रास्ता दे दिए गोपियों को. तो जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्रह्म से मतलब रहता है उन्हें, बाह्य जो शरीर से ऊर्ध्व में रहते हैं, शारीरिक लालच वगैरह उनमें नहीं रहता है। हमारा जो वैदिक सभ्यता है वसुधैव कुटुंबकम इस शर्त पर आधारित है, इस सिद्धांत पर है। जैसे इसी अध्याय के प्रारंभ में हम लोग सीखे कि नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से बोलते हैं कि जो हिरण है, गधे हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा, पक्षी और सब जो विभिन्न प्रकार के जो पशु हैं, इन्हें अपने पुत्री के समान इनसे बर्ताव करना चाहिए, एक प्रामाणिक गृहस्थ को, आदर्श गृहस्थ को। फिर बताते हैं कि इन निरीह पशुओं में अपने पुत्र में क्या अंतर है, कितना अंतर बच जाता है, कोई अंतर नहीं है। शरीर सिर्फ एक दूसरे शरीर ग्रहण किए हैं, नहीं तो वो एक आत्मा है, वस्त्र अलग है, अलग है, तो आत्मा तो एक ही है। आज के श्लोक में ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन दिया जाना चाहिए और ब्राह्मण को देने के बाद ब्राह्मण यहाँ पर देवताओं को, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो देव ब्राह्मण लोग होते हैं देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। तो हम लोग सुनते हैं ना कि भगवान वहाँ पर बताते हैं कि जो सर्वदेवमय गुरु, सर्वदेवमय गुरु, जो गुरु यानी जो ब्राह्मण होते हैं, अन्य जो तीन वर्ण होते हैं नीचे उनके गुरु होते हैं, और गुरु होने के नाते उनमें जो देवता जो ब्राह्मण होते हैं देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तो फिर देवता भी प्रसन्न होते हैं, और उसके बाद जब देवता प्रसन्न होते हैं अन्य जीवों को भोजन दिया जाता है। प्रभुपाद जी से तात्पर्य में लिखते हैं कि वृद्धों और बच्चों को उसके बाद, क्योंकि बच्चे लोग क्षुधा सहन नहीं कर सकते हैं, और उस प्रकार वृद्ध लोग भी उन्हें भी सम्मान देना चाहिए। प्रमुख है पुरुषजन जो गुरुजन होते हैं उनको सर्वप्रथम दिया जाता है, फिर अंत में स्त्रियों को, स्त्रियां तो सबको ऐसे परोसते हैं, देते हैं, भोजन प्रदान करते हैं, खिलाते हैं। अंत में वो जो ऐसे शास्त्र में भी लिखा गया है एक गृहस्थ को सभी को अतिथियों को भोजन देने के बाद पिछले दरवाजे में जाएंगे, तीन बार पुकारेंगे, कोई भूखा है बचा है तो आइए भोजन करिए, फिर सामने दरवाजे में जाएंगे तीन बार पुकारेंगे, कोई भूखा है तो आइए हमारे घर में भोजन कीजिए, फिर उन लोगों से खिलाने के बाद फिर वो स्वयं भोजन करते हैं। फिर बाद में यहाँ बताते हैं कि जो और जो पशु होते हैं, निम्न पशु हैं, उन्हें भी खिलाते हैं। तो ये हमारा जो सभ्यता है वसुधैव कुटुंबकम, प्रभुपाद जी उस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि समाज में आजकल दुनिया में कम्युनिस्ट जो विचारधारा चल रहा है, साम्यवाद, यानी जो पूंजीपति लोग, कुछ पूंजीपति लोग अपने पास धन इकट्ठा कर रखते हैं, तो साम्यवाद लोग चिल्लाते हैं कि इस प्रकार नहीं होना चाहिए, सब संपत्ति समान भाव से बंटा जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इससे बड़ा साम्यवाद क्या हो सकता है, जबकि एक गृहस्थ को मनुष्य नहीं, मनुष्यत्तर प्राणी यानी हर एक जीवों को अपना भूख प्यासा यानी उनके स्थिति के बारे में, उनका भरण पोषण के बारे में चिंता करना होता है एक आदर्श गृहस्थ को, तो इससे बड़ा साम्यवाद क्या हो सकता है। प्रभुपाद जी ने इस उपनिषद के तात्पर्य में लिखते हैं कि वास्तव में ईशावास्यम इदम सर्वम, हम लोग वास्तव में वास्तविक साम्यवाद है, यानी ईश्वर केंद्रित साम्यवाद, हम लोग ईश्वर केंद्रित साम्यवाद फॉलो करते हैं। तो एक प्रश्न उठता है यहाँ कि सर्वप्रथम ब्राह्मण को ऐसे क्यों दिया जाए ऐसे भोजन, ब्राह्मण के मुख में कुछ चीजें हमने सुना है, परंतु क्यों ऐसे? आजकल के समाज में आप जानते हैं बहुत सारे सब समाज बना दिए हैं, क्षत्रिय समाज है, वैश्य समाज है, ब्राह्मण समाज है, शूद्र समाज है, और एक दूसरे से सब अनहेल्दी कंपटीशन चलता, टकराव चलता है, अप्रत्याशित कलह ऐसे लगा रहता है, आज के समय से नहीं, बहुत प्राचीन समय से एक दूसरे से लड़ते हैं। क्यों इस प्रकार लड़ते हैं, जबकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये जो ऊपर तीन वर्ण होते हैं ये फिर और फिर शूद्र उनके साथ इस प्रकार टकराव होने का क्या कारण है, जबकि जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, जो चार प्रकार जो वर्ण व्यवस्था है मैंने उसको सृष्टि किया है, दूसरी कोई नहीं, स्वयं भगवान ने परब्रह्म ने उसे सृष्टि किए हैं। किस लिए? क्या किसी एक वर्ग को दबाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए? नहीं, यहां पर गुण कर्म, समाज में लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, कहीं आप देखेंगे कई शूद्र परिवार के कोई बच्चा है, कभी शादी वगैरह में जाते हैं घोड़े में चढ़कर, तो कभी ब्राह्मण वस्ती होकर जाते हैं तब तो उसको तुरंत उतारते हैं और खूब पिटाई करते हैं, पिटाई कर हॉस्पिटल भेज देते हैं और सब मार के भगा देते हैं। कभी ब्राह्मण का लड़का अगर कहीं सॉरी शूद्र का लड़का कोई ब्राह्मण वस्ती होकर मोटरसाइकिल में जा रहा है तो मोटरसाइकिल उतारते हैं, उसको पिटाई करते हैं और मोटरसाइकिल जब्त कर लेते हैं। और शूद्र क्या करते हैं, वो भी इस प्रकार बोलते हैं कि जो शास्त्र है वैदिक शास्त्र है, ब्राह्मण लोग अपने मन मर्जी से ऐसे सब बनाए हैं, अपने सनक के हिसाब से शूद्रों को पैर की जूता की भांति रखने के लिए, दबा के रखने के लिए इस प्रकार शास्त्र रचना किए हैं। हाँ, ये अपने मन मर्जी से करते हैं, ये इनका मनगढ़ंत है, शास्त्रों को नहीं मानते हैं। और वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो और कहीं किसी जगह पर लेंगे जहाँ पर साम्यता हो, साम्यवाद हो, तो फिर वो साम्यवाद की ओर चले जाते हैं, फिर और क्या करते हैं ना, वो इस प्रकार वैदिक धर्म से च्युत हो जाते हैं। तो इस प्रकार सब हर जगह में, क्या वैदिक शास्त्र कोई साधारण इंसान लिखा है, कोई ब्राह्मण अपने मन मर्जी से लिख दिया है इसे? वैदिक शास्त्र इसे आमना जो वेद उपनिषद समस्त वैदिक शास्त्र जो है ये अपौरुषेय है, कोई साधारण इंसान इसे नहीं लिखा है। जिनके पास चार प्रकार के त्रुटियां है, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाठ, तो वो व्यक्ति इन शास्त्रों को कुछ समझ भी नहीं सकता है, शास्त्र में क्या लिखा, तो इस सिद्धांत को कैसे स्थापन करेगा, नहीं कर सकता है। ऐसे जैसे सिद्धांत है प्राचीन समय से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े मुनि ऋषि हैं, तब भी सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े विद्वान महान भक्त है, वो यहाँ तक कि स्त्री पुरुषों में अंतर नहीं देखते थे भौतिक संसार में, तो वो भी श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद वर्णन करने के बाद बोलते हैं कि मैं तो अपने मति हिसाब से जितना संभव हुआ मैं बोल पाया, समझा हूँ, परंतु ये जो भौतिक संसार का जो रचना है इसे कोई भी व्यक्ति पूरा पूरा नहीं बोल सकता है, इतने गुह है इस संसार के, भौतिक संसार का जो रचना है श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद में वर्णन है। तो भला ये साधारण इंसान, कोई ब्राह्मण अपने सनक के अनुसार इसे वैदिक शास्त्र भला लिखेगा? और फिर भगवान ने इसे बनाए हैं, जो चातुर्वर्ण्य है मानव समाज में भगवान ने बनाया है और कोई नहीं बनाया है, और ना कि फिर ब्राह्मण लोग क्या करते हैं अपने हठ धर्म के कारण, क्योंकि 11वें स्कंद भागवत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कभी कभी जो ब्राह्मण लोग, हम कभी कभी सुनते हैं ना कि ब्राह्मण वैष्णव में कभी कभी अंतर समझते हैं कि ब्राह्मण क्या वैष्णव क्या है, ब्राह्मण वैष्णव में कोई अंतर नहीं है, परंतु ब्राह्मण के स्तर से व्यक्ति कभी कभी पतन की ओर चले जाता है, फिर लास्ट में फिर और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद फिर क्या कर्मकांड की ओर चला जाता है, जैसे कर्मकांड मार्ग की ओर चला जाता है, जामे मांग पुष्पितांग वाच प्रबदंत विपश्चिता वेदवाद रता पार्थ नान्य दस्ती वादिन, तो फिर बोलते हैं कि क्रिया विशेष बहुलम भोग ऐश्वर्य गति प्रति, इसे भोग ऐश्वर्य के प्रति चले जाते हैं, और वेद शास्त्रों को इस प्रकार वादिन हो वेदवाद रता पार्थ, तो वेद में इस प्रकार युक्ति तर्क करते हैं, कर्मकांड बोलते हैं कि इसके अलावा कोई और सिद्धांत है ही नहीं, ये भोग ऐश्वर्य स्वर्ग प्राप्ति करना, इस संसार में अच्छा उच्च जीवन बिताना, धन प्राप्त करना, बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्ग में ऐश्वर्य भोग करना, अप्सराओं के साथ भोग करना, इसके अलावा कोई और सिद्धांत बड़ा है ही नहीं। ब्राह्मण लोग इस प्रकार वेद पाठ करने पर भी ये फिर विपदगामी हो जाते हैं, कर्मकांड मार्ग की ओर चला जाते हैं, फिर और थोड़ा आगे अगर बढ़ते हैं तो फिर मायावाद सिद्धांत ब्रह्म साजुज्य मुक्ति की ओर चले जाते हैं, कि अपने आप को ब्रह्म में लीन करना चाहते हैं। तो कभी कभी श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से बोलते हैं कि जो चार वर्ण है, ऊपर के जो चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये कभी कभी नीचे की ओर ही चले जाते हैं, नीचे की ओर चले जाते हैं। मतलब मुह्यंती आमनायवादिनः, ये जैसे मैंने बताया कि मुह्यंती आमनायवादिनः, आमनायवादिनः मतलब आमनाय मतलब वेद, वेद शास्त्र, वादिनः मतलब ऐसे वाद विवाद करके, क्योंकि जो व्यक्ति में घमंड रहता है ना, वो उसी सिद्धांत को मानेगा अपने सनक के हिसाब से। जो उसका प्रकृति के गुण है, जिस गुण पर वो परिचालित होता है, भले ही वो ब्राह्मण परिवार में हो, क्षत्रिय हो, वह वैश्य शूद्र हो, किसी परिवार में क्यों न हो, उसका प्रकृति का जो स्वाभाविक गुण है, जिस गुण में वो रहता है, उसी गुण के हिसाब से वो वाद विवाद करेगा शास्त्रों को लेकर, बोलेगा कि यही सिद्धांत सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर क्या करते हैं ना, वो कर्मकांड विभाग की ओर चले जाते हैं। ब्राह्मण यहाँ तक कि ब्राह्मण भी कर्मकांड विभाग की ओर जाकर पशु हिंसा करने लगते हैं, पशुओं को बलि चढ़ाते। पशु बलि का अर्थ है कि वैदिक शास्त्रों के जो हिंस है, जो मंत्र है, उसे साबित करना है वो ठीक है कि गलत है। और वो जो पशु को बलि दिया जाता है, वो तुरंत किसी उच्च लोक में उस स्थान प्राप्त कर लेता है, चाहे कहीं पितृलोक में हो, कहीं और स्वर्ग ऊपर लोक में हो, वो उसका मनुष्य शरीर से भी ऊपर हो जाता है। कभी कभी नया पशु बनकर यज्ञ कुंड से आ जाता है। ये वैदिक मंत्र को स्थापित करने के लिए इस प्रकार यज्ञ कर्म करना होता है। पशु बलि पहले समय में था, और कलयुग में तो पूरा बंद है, कलयुग में कोई पशु बलि नहीं है। परंतु कभी कभी ब्राह्मण लोग इतने इस प्रकार पशु बलि करते हैं, आज भी लोग करते हैं, अज्ञानी इतने पशु बलि करते हैं, इतने पशु बलि देते हैं, तो इसे कोई थामने वाला व्यक्ति संसार में नहीं होता। फिर भगवान स्वयं आते हैं बुद्ध के रूप में, बुद्ध देव आकर भगवान बोलते हैं कि क्यों इस प्रकार पशु बलि देते हो, जीवों को हत्या करते, मारते हो। तो बोलते हैं कि वेद में लिखा गया है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं वेद को नहीं मानता हूं, यानी आपात दृष्टि से भगवान वेद को नकार देते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति वेद शास्त्र को नकारता है, चाहे वो स्वयं भगवान क्यों न हो, उन्हें नास्तिक कहा जाता है। भगवान नास्तिक नहीं है, परंतु भगवान ने जो सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किए यहाँ पर कि मैं वेद को नहीं मानता हूँ, इसलिए बुद्ध देव ने जो सिद्धांत उन्होंने दिए नास्तिक सिद्धांत है, उसे वेद अनुजाई व्यक्ति, वैदिक शास्त्र के जो अनुजाई होते हैं, तो उन्हें ऐसे मानते नहीं। तो इसी प्रकार ये आमनायो मोहियंती आमनायो वादिन हो, कभी कभी ब्राह्मण लोग इतने बुद्धिमान होने पर भी इस प्रकार भ्रम में आ जाते हैं, पशु हिंसा तक उतर जाते हैं, और मूल धर्म जो वास्तविक धर्म, वास्तविक वेद धर्म जो है, जो भागवत में लिखा गया है कि जो वास्तविक जो धर्म है, सवई पुंस पर धर्म, जो पर धर्म है, जत भक्ति अध्यक्ष जे भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम भक्ति है, ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस धर्म को त्याग कर, मूल धर्म को त्याग कर, वो एक शाखा में कहीं और चले जाते हैं। यानी जैसे मान लो कहीं आप दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाते जाते कहीं इधर उधर, कहीं रास्ता में, कहीं गुड़गांव में, कहीं इधर उधर, कहीं लेफ्ट राइट हो गए, तब दिल्ली में नहीं पहुंच पाएंगे, और कहीं जाके पहुंचेंगे। तो इसी प्रकार ब्राह्मण लोग ऐसे कभी कभी विपथगामी हो जाते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं ना, एक प्रकार, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं होते हैं, जो वेद शास्त्रों को का जो मूल धर्म को हटकर और कुछ ऐसे बोलने लगते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण आगे आगे भी बताते हैं कि वो लोग भोग ऐश्वर्य में इतने ये हो जाते हैं, तो यहाँ तक कि घर गृहस्थ जीवन में भी वो पशु से भी हिन्न और इस प्रकार व्यवहार करने लगते हैं। तो वो फिर ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, तो इसलिए ब्राह्मण को बुद्धिमान होते हुए भी कभी कभी इसे विपथगामी हो जाते हैं, अगर उचित मार्गदर्शन प्राप्त न हो। तो उन्होंने इस प्रकार, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पहले समय में ऐसे भी था कि ब्राह्मण लोग कभी कभी इतने कट्टर हो जाते थे। वास्तव में क्यों इस प्रकार कट्टर हो जाते हैं, क्योंकि जो शास्त्र में लिखा गया है, वेद शास्त्र में जो सिद्धांत लिखा गया, ब्राह्मण का जो स्थिति है, वास्तव में महान है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राप्य पुण्यम कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा सुचिनाम श्रीमताम गहे जोग भ्रष्ट अभिजायते। जो जोग पथ से विचलित हो जाता है, हरे कृष्ण नींद आ गया क्या आप लोग? वेद शास्त्र में आप सबसे पहले बैठे हैं सामने, वेद शास्त्र में जो वचन है भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये जो योगाभ्यास करने के बाद जो नीचे गिर जाते हैं, तो जो योगाभ्यास उन्होंने किए हैं उसका पतन नहीं होता, नष्ट नहीं होता। वो जिसलिए गिरते हैं, नीचे गिर जाते हैं, वही चीज फिर भगवान उसे प्रदान करते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोका, उन्हें ऐसे पुण्य लोक में स्थान दिया जाता है, स्वर्ग आदि पुण्य लोक में स्थान दिया जाता है। किस लिए पतन हुआ था? भौतिक भोग के प्रति आसक्त हुआ था, इसलिए तो उनका पतन हुआ था ना जोग पथ से। तो उन्हें फिर भौतिक भोग को प्रदान किया जाता है स्वर्ग आदि लोक में, पुण्य लोक में। तो वहां पर दीर्घ दिन लंबे से उसी तरह शाश्वती समाह अनेक दिनों तक इस प्रकार वहां भोग भोगने के बाद सूचिनांग श्रीमताम गहे जोग भ्रष्ट अभिजायते। यहाँ पर फिर उन्हें सूचिनांग श्रीमताम गहे, बहुत सूचिनाम मतलब पवित्र ब्राह्मण वैष्णव परिवार में, और श्रीमताम श्रीमताम गहे मतलब धनाढ़ परिवार में, साम्रांत परिवार में जन्म मिलता है। तो धनाढ़ परिवार में भी जन्म मिलता है, मतलब वो जो धन है ऐसे दो नंबर ब्लैक मार्केट करके धन नहीं है, जो सूचिनाम, इसलिए एक एडजेक्टिव लगाया गया है सूचिनाम, यानी पवित्र उपाय से नीतिपूर्ण ढंग से जो धन कमाया है ऐसे व्यक्तियों के घर में उसे जन्म प्राप्त होता है। तो जिससे फिर वो इस प्रकार सुविधा उन्हें प्राप्त होता है, जिसके कारण फिर वो क्या करता है, वो पूर्व जन्म के संस्कार को फिर दोबारा वो प्राप्त करता है, योग सिद्धि में लग जाता है। पूर्वाभ्यास है ना, मतलब वो बुद्धि प्राप्त करता है, वो बुद्धि वो उसी प्रकार जो चेतना को प्राप्त करता है दोबारा। जो ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण करते हैं ऐसे धनाढ्य परिवार, बहुत पुण्य कर्म रहता है पिछले जन्म का, इसके कारण ये धनाढ्य ब्राह्मण वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है। स्वाभाविक रूप से जो ब्राह्मण वैष्णव परिवार में जन्म लेते हैं उनका पिछले जन्म का पुण्य बहुत अच्छा है, जिसके फल स्वरूप ये जन्म लिए हैं। परंतु अगर उसको आगे वो नहीं बढ़ाते, वहीं से रुक जाते हैं, जातिवाद में फंस जाते हैं, नहीं हम तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया कोई बात नहीं, हम कुछ भी करें ब्राह्मण है, इस प्रकार नहीं होता। ब्राह्मण कभी भी अपने को अभिमान नहीं करता, अपना मतलब कभी भी क्रोध हिंसा लोभी इस प्रकार नहीं बनता है, वो स्वाभिमान में जीता है, भगवान ब्रह्म से उसका मतलब रहता है। वो किसी का नौकरी नहीं करेगा, धन के प्रति कोई लालसा इच्छा नहीं रहेगा, जैसे सुदामा ब्राह्मण है। सुदामा ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण द्वारका से मिलने जाते हैं और पत्नी के कहने पर जाते हैं कि ऐसे अपना जो मित्र है उनसे कुछ हेल्प ले सकते हैं, राजा है द्वारका के, और आपका तो वो अत्यंत करीब के मित्र थे, तो आप उनसे कुछ सहायता ले सकते, इतने बच्चे हैं आपके पास, ऐसे रुखे सुखे में जीवन जीना इतना संभव नहीं है, आप जाइए। तो ब्राह्मण ने ये नहीं सोचा कि पत्नी मुझे धन मांगने के लिए बोल रहा है, मैं जा रहा हूँ कृष्ण से जाकर धन मांग कर लेके आऊँगा, नहीं, उन्होंने सोचा कि मैं इस बहाना से मुझे मेरे मित्र से कृष्ण से साक्षात दर्शन हो जाएगा, इस बहाने से उन्होंने गया। और भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने बहुत स्वागत किए उन्हें, इस प्रकार जो जो हम जानते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिंहासन से उठकर आ गए अर्जुन को, सुदामा को स्वागत करने के लिए, आलिंगन किए, एक दूसरे को आंखों से आंसू बहाते हुए भिगा दिए, परंतु वो ऐसे मांगे नहीं, ना भगवान श्री कृष्ण ने कुछ लज्जा बस कुछ दिए, भगवान श्री कृष्ण भी शर्मा गए कि मैं सुदामा को क्या दूं, उसके भक्ति के बल पर मैं क्या दे सकता हूं, मेरे पास क्या है। और सुदामा ने तो मांगे नहीं कि मैं भगवान से ऐसे एक तुच्छ वस्तु धन कैसे मांग सकता हूं, परंतु जाते वक्त तो उन्होंने सुदामा इस भाव से प्रसन्न है कि बोलते हैं कि कोहम दरिद्र पापियान कृष्ण श्रीनिकेतन, कि मैं कौन हूँ, मैं पापी एक हूँ और एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, और कृष्ण कौन है, श्रीनिकेतनम, वो लक्ष्मी पति है, और ब्रह्मबंधुर अपि, मैं एक ब्रह्मबंधु ब्राह्मण भी नहीं हूँ, एक ब्राह्मण के गुण भी मेरे पास नहीं है, मैं ब्रह्मबंधु हूँ, ब्रह्मबंधु अपि, मुझे एक ब्राह्मण के बंधु होने के नाते इतने, और कृष्ण श्रीनिकेतनम है, उन्होंने मुझे बाहुभ्याम परिरंभिता, उन्होंने मुझे अपने बाहु में आलिंगन किए। इसको सोचकर कृष्ण के जो बर्ताव है, भक्त भगवान का जो संबंध है, इस प्रकार प्रेम पूर्ण व्यवहार को सोचकर सुदामा खुश है। उन्हें धन से कोई मतलब नहीं है, भौतिक धन संपदा आज है, वो कभी प्रयास नहीं करता। ब्राह्मण कभी भी भौतिक धन संपदा प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करता, वो भगवान के भरोसा में रहता है। तो भला इस प्रकार क्रोध राग हिंसा एक दूसरे को नीचा दिखाना, समाज में निचले वर्गों के प्रति इस प्रकार असद आचरण करना, ये किस बात की का है? मतलब इस प्रकार जायज नहीं होता ये। तो दोनों ओर इस प्रकार ये लोग क्यों इस प्रकार समाज में एक दूसरे से लड़ते हैं? ब्राह्मण वर्ग शूद्र से लड़ते हैं, शूद्र ब्राह्मण से लड़ते हैं। ऐसे जो भगवान के द्वारा जो स्थापित वैदिक जो वेद वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था है उसे उसे क्या करते हैं, उसे दिमाग खाने के तरह इसको नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। एक व्यक्ति था, प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक व्यक्ति था, उसके चार बच्चे थे। तो चार बच्चों में लड़ाई झगड़ा होता था, तो बेटा का पिताजी का हेल्थ थोड़ा सा खराब हो गया कुछ, तो चारों को बुलाया कि आओ क्या विचार करते हैं, क्या इस पर लड़ाई हुआ था, तो शांति से बैठ। तो चारों ने आए, पिताजी के हाथ पैर चारों पकड़ लिए, एक दो दो हाथ और दो पैर चारों पर दबाने लगे। फिर ऐसे करते करते दबाते दबाते एक दूसरे से लड़ने लगे, और जोर जोर दबाते थे, लड़ते थे, और इतना जोर जोर से दबाते थे। पिता बोल रहे कि अरे तुम लोग तो फाइटिंग लगते, मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे तो कम से कम बचाओ, मैं तो तुम्हारा कोई बिगाड़ा नहीं है, तुम पर एक दूसरे से लड़ते हो और मुझे नुकसान पहुंचाते हो। तो इसी प्रकार है, हम लोग शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एक दूसरे से लड़ते हैं, बड़े बड़े समाज बना दिए हैं, तो फिर अपना अपना टाइटल क्यों दे रखे हैं? अगर आप लोगों का जो धार्मिक आचरण पालन नहीं करते हैं, जैसे शूद्र, मान लो शूद्र ग्रुप में सब लिखते हैं कि शूद्र ग्रुप है, तो उसमें सब पोस्ट करते ये करते हैं, और ब्राह्मण को आक्षेप करते, ब्राह्मण इस प्रकार पोस्ट करते हैं, शूद्रों का आक्षेप, बड़े बड़े सब पोस्ट लिखते हैं। अगर इस प्रकार तुम शूद्र है ब्राह्मण है अपने आप को मानते हो, तो इस प्रकार फाइटिंग क्यों लगते? भगवान को जो भगवान के द्वारा प्रस्तुत जो धर्म वर्णाश्रम व्यवस्था क्यों नष्ट करते हो? इस प्रकार लड़ने की वजह से क्या ये वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था नष्ट नहीं हो रहा है? इतनी मूर्खता क्यों फिर? तो ये सब का एक ही कारण होता है, व्यक्ति वास्तविक जो मूल धर्म है इसे भूल जाता है। मूल धर्म क्या है उसे भूल जाता है। ब्राह्मण का कहना है कि जाति से जातिवाद ले आते हैं कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वही ब्राह्मण है, और जो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है वो क्षत्रिय है, शूद्र है शूद्र है, तुम्हारा कार्य है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, इस प्रकार कहीं नहीं लिखा गया है। यहाँ पर जो लिखा गया है कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, जो चार वर्ण व्यवस्था है ये गुण और कर्म के अनुसार है। अगर उस प्रकार कार्य करते हो, अगर कार्य व्यक्ति कैसे कर सकता है, जो गुण उसके पास है जिस गुण से वो प्रभावित है, इसका प्रकृति के गुण है जो है उसी गुण के अनुसार कार्य करेगा। तो यानी गुण और कर्म के अनुसार भगवान को मेरे द्वारा स्थापित है। और वही बात नारद मुनि ने बताते हैं युधिष्ठिर महाराज से, हम लोग पिछले दिनों दो तीन अध्याय से पहले सुनकर आए हैं, ये 11वें स्कंद भागवतम में है। यस्य जल लक्षणम प्राप्तम वर्णाभिभंजकम, यस्य जल लक्षणम प्राप्तम पुरुषम वर्णाभिभंजकम तत्तेनैव विनिर्देशेत यदि अन्यत्र स्यात् दृश्यते विनिर्देश। बोलते हैं कि यस्य जल लक्षण प्रोक्तम, क्योंकि इससे पहले नारद मुनि ने ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य सूत्रों का उनका जो गुण है वर्णन किए, उसके बाद बोल रहे हैं कि यस्य जल यस्य यत लक्षणम, जिनके जो जो लक्षण प्रोक्तम ऊपर कहे गए पुरुषम व्यक्ति के वर्णाभिव्यंजकम, जो ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य सूत्र ये वर्ण में है, यदि अन्यत्र स्यात् अपि दृश्यत, अगर अन्यत्र यानी इन मान लो कोई ब्राह्मण के क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, अगर उसके पास कई और गुण वर्ण का गुण दिख रहा हो तो उसी हिसाब से उसे ग्रहण करना चाहिए। तो यदि अन्यत्र अपि दृश्यत तत्तेनैव विनिर्देशेत, उसी हिसाब से उसे स्वीकार करना चाहिए। सेम चीज यहाँ पर लक्षणम बताया गया, यहाँ पर भगवान कृष्ण गुण कर्म बताते हैं, गुण बताते हैं। तो इसी प्रकार ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र लड़ने का कोई है नहीं। अगर मूल धर्म वास्तविक धर्म का सिद्धांत को सबई पुंस पर धर्म जत भक्ति अध्यक्ष जय, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। प्रभुपाद बताते हैं कि हम जैसे सुनते हैं कि नवदीप में यानी मायापुर उस जगह पे एक जयदेव जयदेव गोस्वामी को सब लोग जानते हैं। वहां पर लक्ष्मण सेन एक राजा थे तो वहां रहते थे। तो राजा ने देखा कि एक बड़ा विद्वान प्रचंड एक भक्त वो क्या कर रहा है ना, वो विभिन्न प्रकार शास्त्र में अत्यंत पारंगत है और महान भक्त है, और ये मेरे राज्य में है परंतु इतने दरिद्र अवस्था में रह रहा है। एक गंगा के तट पर किनारे पर एक बना दिए झुपड़ी और उसमें रह रहा है, इतने गरीब की हालत में रह रहा है। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से बर्ताव किए, बोले कि जाओ उन्हें बुला कर लेके आओ, उन्हें बोलो कि हम मेरे राजमहल में आके रहे, मैं उसे राजगुरु बनाऊंगा। और तो उनके पास जब गए उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं मैं जिस जगह पे हूँ वहीं हूँ, ठीक वो भी ब्राह्मण है। फिर बाद में राजा स्वयं आए, आकर बताए कि आप हमारे पर नाराज है क्या, ऐसे है, इन पर बातचीत किए। फिर बाद में बताए आप चलिए मेरे पास, वहाँ रहेंगे राजमहल में, मैं इस प्रकार आपके चरण में हूँ, आप जो मार्गदर्शन दर्शन देंगे उस पर मैं चलूंगा। ब्राह्मण ने बोले, जयदेव गोस्वामी बोले कि नहीं मैं जिस जगह पर हूँ ठीक हूँ। तो उन्होंने बोले आप कैसे जीवन यापन करते हैं, इतने गरीब अवस्था में रहते हैं, आप क्या ऐसे क्या खाते हैं। तो उन्होंने बोले कि क्या खाऊं, मैं भिक्षा मांगकर कुछ चावल वगैरह लेके आता हूँ, और पत्नी ऐसे पर इमल का पेड़ से कुछ पत्ता तोड़ के उसको चटनी बना देते हैं, चावल और चटनी ऐसे खाता हूँ। तो उन्होंने ये जो है गाथा है, हमें जयदेव गोस्वामी हम बहुत परिचित है, हम लोग गाते हैं रोज केशव दूत नरहरि रूप जो गीत गोविंद में है, तो बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है जयदेव गोस्वामी। यहाँ तक कि अन्य जो संगीत क्लब में जयदेव गोस्वामी के ये जो गीत गोविंद प्रसिद्ध है दशावतार स्तोत्र, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किए, राजा के पास जाकर नौकरी करना स्वीकार नहीं किए, उन्होंने अपना उसी अवस्था में भगवान से मतलब रखे। तो वास्तविक धर्म के आधार पर अगर कोई चलेगा तो वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षेत्रीय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो कभी भी इस प्रकार नहीं करेगा, किससे लड़ेगा ना ये करेगा, नहीं। भगवान ने सबको समान रूप से ऐसे दिए हैं, बुद्धि बल विवेक दिए हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्हें ऐसे दिए हैं इतने, क्योंकि मनुष्य जो नहीं मिला है वो अपने हिसाब से भगवान को प्राप्त कर सकता है, जो भी उसके पास कार्य क्षमता दक्षता है तो उसे वो भगवान की सेवा में व्यवहार करके यूटिलाइज करके वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जब यहाँ पर कहा जाता है कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक के हृदय में स्थित हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति नारायण बन चुका है या कोई दरिद्र व्यक्ति नारायण बन गया है। यहाँ पर ऐसे निष्कर्ष को अस्वीकार किया गया है। जब भी बोलते ना जो दरिद्र नारायण सेवा, कभी कभी बोलते ना सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, तो मानव सेवा ही माधव सेवा। ये जो सिद्धांत है सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसको अगर कोई फॉलो करता अच्छा है, खराब नहीं है इसमें, परंतु जहाँ तक वास्तविक मूल धार्मिक सिद्धांत है, यहाँ पर जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर कोई बोलेगा कि मैं किसी जीवात्मा का सेवा कर दिया, रोटी कपड़ा मकान उसे दे दिया, उनका वस्त्र दे दिया, ठीक कर दिया, तो फिर मैं उसका इलाज कर दिया, कोई डॉक्टर आएगा उसको कपड़ा को धो देगा, अच्छा से इस्त्री कर देगा, उसको पहना देगा, बोलेगा कि मैं उसका बीमारी ठीक कर दिया, ये संभव है क्या? नहीं है। तो नारायण सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा तब होता है जब यहाँ पर सिद्धांत है कि जब हम ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण लोभ से रहित है, भगवान ब्रह्म से उनका मतलब है, उनका पूजा किया जाता है, उनको भोजन दिया जाता है, तो फिर वो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। ऐसे भी है कि अगर मुझे, इफ यू लव मी लव माई डॉग, अगर मुझे आप पसंद करते मेरे कुत्ता को पहले पसंद करो, ये सिद्धांत है। अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भक्तों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, परंतु ये सिद्धांत हम नहीं थोप सकते हैं कि किसी जीवात्मा को शारीरिक रूप से हेल्प करने से हम भगवान को भी सेवा कर दिए, आध्यात्मिक रूप से हमारा आत्म साक्षात्कार को भी जान लिए। भगवान कभी दरिद्र नहीं होते हैं, नारायण कभी दरिद्र नहीं होते, दरिद्र नारायण। प्रभुपाद बोलते हैं अगर दरिद्र नारायण शब्द इन्वेंशन किए हैं तो फिर छाग नारायण, बिल्ली नारायण, कुत्ता नारायण, इसको बोलिए। तो फिर ऐसे कैसे होता है, छाग नारायण को काट कर फिर दरिद्र नारायण को खिलाने का क्या जरूरत है? नारायण का अगर देख रहे हैं ब्रॉडर सेंस में देख रहे हैं, अगर आपके पास बहुत विस्तृत दृष्टि है, इस सब जगह में आप नारायण देखते हैं, तो फिर आप कुत्ता नारायण, बिल्ली नारायण, छाग नारायण, सब में नारायण देखिए, तो फिर एक नारायण को काट के दूसरे नारायण को खिलाने का क्या जरूरत है? नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम नहीं बोल सकते हैं। हमें इस सिद्धांत को बहुत बुद्धिमान से समझना होगा। मानव सेवा ही माधव सेवा कुछ हद तक तो बैठता है सिद्धांत में, कि जब हम जीवात्माओं को पसंद करते, प्रेम करते हैं, हमें वसुधैव कुटुंबकम, जब जीवात्मा से प्रेम करते भगवान प्रसन्न रहते हैं, देर इज नो डाउट। सेम जगह हमें कभी सिद्धांत में इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए कि जीवात्माओं को सिर्फ भौतिक दृष्टि से एनलाइटेनमेंट कर दो, उन्हें इस प्रकार कुछ सुविधाएं प्रदान कर दो, हम सोचेंगे कि बस आध्यात्मिक उन्नति हो गया। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान 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 है, जीवात्मा कभी नारायण नहीं हो सकता, जीवात्मा हमेशा भगवान का दास है। ये मायावाद सिद्धांत है कि हम जब जीवात्माओं का सेवा करते हैं, इसका मतलब वो भगवान भी जीवात्मा भी एक है, इस प्रकार नहीं है। जीवात्मा जीवात्मा है, भगवान भगवान है, माता पिता माता पिता है। भगवान और जीवात्मा कभी भी एक नहीं हो सकते, एक साथ नहीं, मतलब उनका जो आत्मा एकात्मवाद नहीं हो सकते। वो हमेशा सेवक और भृत्य का, सेवक और प्रभु का संबंध रहेगा। भुक्तो भोग्य, भुक्त मतलब भोग्य, भोक्ता, भुक्तो भोक्ता, भोक्ता मतलब जो भोग करते हैं, भुक्त मतलब जो भगवान को सेवा प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार ये जो सिद्धांत हमने आज सीखा कि ब्राह्मण जो सभ्यता है, महान संस्कृति है। प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में तात्पर्य में लिखते हैं कि मानव ब्राह्मण संस्कृति युक्त मानव सभ्यता अत्यंत उत्कृष्ट है। नहीं, जिनके पास ब्राह्मण संस्कृति है, ब्रह्मचित्त संस्कृति है, वो अत्यंत उत्कृष्ट है। तो इसलिए एक महान नारायण परायण, एक महान नारायण का एक महान भक्त होना ब्राह्मण से कई गुना ऊर्ध्व में है, क्योंकि ब्राह्मण कभी कभी नीचे की ओर चले जाते हैं। क्यों? मूल धर्म तत्व को न जानने के कारण। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? बोलिए। यहाँ पर आ जाइए थोड़ा सा। हरे कृष्ण, थोड़ा बातचीत मत करिएगा, बोलिए। आप थोड़ा जोर से बोलिए खड़ा होकर। यहाँ पर आ जाइए, खड़े होकर बोल दीजिए।
प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि इसमें चर्चा हो रही है ब्राह्मण तथा देवताओं को प्रसाद प्रदान करना, फिर अन्य जीवों को प्रसाद बांटना, फिर इस प्रकार समस्त जीवों के, प्रत्येक जीव के भीतर परमेश्वर जो है भगवान की पूजा होती है। लेकिन जो सिद्धांत के अनुसार हम जैसे बताते हैं कि जब जड़ में पानी डालते हैं तो अपने आप वृक्ष संतुष्ट हो जाता है, तो इसमें जो उद्देश्य प्रत्येक जीव के भीतर परम पुरुष की पूजा कर सकोगे, तो भगवान को जब प्रसाद खिलाते हैं तो फिर ये उद्देश्य तो पूजा पूरा हो जाता है, देवताओं को खिलाने का या ब्राह्मणों को खिलाने का। फिर अलग से यहाँ पर
जो शब्द लिखा गया ना, यहाँ पर एक शब्द लिखा गया, क्या शब्द लिखा गया? अब देखिए लास्ट में देखो, क्षेत्रज्ञम, क्षेत्रज्ञम ब्राह्मणा ननु, क्षेत्रज्ञम लिखा गया। क्षेत्रज्ञम मतलब भगवान परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में है। जब सभी जीवों को इस प्रकार भगवत प्रसाद, इवन प्रभुपाद लिखते हैं प्रसाद शब्द लिखा गया है, जब प्रसाद वितरण किया जाता है उन्हें जीवात्माओं को, तो प्रसाद खाने के कारण उन्हें शुद्धिकरण प्राप्त होता है, उन्हें शुद्ध होता है व्यक्ति। तो जब व्यक्ति शुद्ध होता है तो आत्मा को मतलब भौतिक बंधन से मुक्त होता है, तो भगवान जो परमात्मा रूप में विद्यमान है वो खुश होते हैं। जीवात्मा जब भौतिक बंधन से मुक्त होता है, सबके हृदय में भगवान है, समझ जाते हैं कि ये जीवात्मा भौतिक बंधन से मुक्त हुआ, कोई व्यक्ति किसने खिलाया, प्रसाद खिलाया, अच्छा कार्य किया। भगवान को जब हम प्रसन्न करते हैं, जब जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, जब हम भगवान को प्रदान करते हैं कुछ भोग्य सामग्री, उनका सेवा करते हैं, सारा चराचर जगत तुष्ट हो जाते हैं। वो बात सिद्धांत ठीक है, पर ये फिर हम, ये है ना क्षेत्रज्ञ है ना, ये भी तो भगवान है ना, परमात्मा भगवान का अंश है, वो भी प्रसन्न होते हैं इस प्रकार। प्रभुपाद जी सोच विचार करके यहाँ लिखे हैं कि प्रसाद जब खिलाते हैं, क्योंकि एकमात्र भोक्ता तो भगवान है। पिछले श्लोक में लिखा गया है कि सर्वज्ञ भ्रूक, हमें कुछ भी सामग्री वस्तु को ऐसे भगवान को दिए बिना नहीं खिला सकते किसी को, हम भगवान को ही भोग्य वस्तु प्रदान करना है। तो जो प्रसाद के रूप में प्रसाद देना, मतलब इससे पहले भगवान को प्रसन्न करते हैं, प्रसाद के रूप में जीवात्मा को देते, जीवात्मा शुद्ध होता, भौतिक बंधन से छूटता है, परमात्मा रूप में भगवान विद्यमान रहते, प्रसन्न होते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। चाहे उस तरफ से आओ भगवान को प्रसन्न करो, ये भी इस तरफ से हो गया ना, ऐसे अल्टीमेटली चक्कर भी बन गया ना, उसका यज्ञ चक्र बन गया, ठीक है।
और दूसरा प्रश्न था कि इसमें आपने बताया था कि गृहस्थ पहले जाता है, फिर बाजार में आवाज लगाता है, घर के पिछले द्वार पे आवाज लगाता है, तो प्रैक्टिकल अगर लेवल पे देखें तो आज के समय में जनरली अगर देखा जाए तो एक गृहस्थ के लिए इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जनरली उसका जो खर्च होता है वो अपने परिवार का जैसे तैसे भरण पोषण करते हैं, फिर उसके बाद अगर बाजार में जनरली अगर कोई भी ऐसे आवाज लगाएगा तो उसको पूरा भंडारा करना पड़ेगा।
जब हमें जब डेस्टिनेशन थोड़ा दूर का रखेंगे, दूर दृष्टि संपन्न होंगे, कम से कम मिनिमम चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारा आदर्श होना चाहिए, ये हमारा जो आदर्श ये होना चाहिए कि सभी जीवों का कल्याण हो, सभी हर जीवों का पालन पोषण हो, यानी हमारा जो मन वृत्ति ये होना चाहिए कोई भी भूखा न रहो, जितना संभव है हम करें। ये नहीं कि हम हर किसी व्यक्ति को एक दिन में भूखा से बचा सकते हैं या सबको खिला सकते हैं, हम किसी को नहीं खिला सकते हैं, भगवान का इच्छा के बिना किसी को नहीं खिला सकते। जिसका भाग्य में है वो भी नहीं खा पाएगा अगर भगवान का इच्छा न हो तो। हमें अगर किसी व्यक्ति को देने जा रहे हैं, उसका भाग्य में नहीं है वो खाने का, नहीं खा पाएगा। एक बार शंकर पार्वती ने, एक भक्त था शंकर जी का, उसने शंकर जी का पूजा उपासना किया और करने के बाद भगवान से मांगा, हे भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, गरीब हूँ, दरिद्र हूँ, कृपा मुझे थोड़ा सा कृपा करिए मेरे ऊपर, मुझे कुछ दीजिए। भगवान शंकर जी से कुछ सुन नहीं रहे, ऐसे रोच उपचार। पार्वती बोले कि देखो आपका एक भक्त है, रो रो के विलाप कर रहे हैं, कुछ तो उनका हेल्प करिए, कुछ तो दीजिए। तो भगवान बोले कि देखो मैं तो उसके भाग्य में है ही नहीं, मैं दूँ तब भी वो कुछ काम में नहीं आएगा उसका। तो पार्वती बोले कि तो दो तो कम से कम सही, पहले तो आप दीजिए उन्हें, काम में आए नहीं, आप तो दीजिए, आप तो दे ही नहीं रहे। शंकर जी ने आए प्रकट हुए, बोले कि बस कैसे हैं, और ये एक फल दिए उन्हें, बोले कि ये लो। ऐसे शंकर तो उसने बोला कि मैंने कुछ ऐसे धन दौलत मांगा था, मुझे भगवान प्रकट होकर के एक फल दे रहे हैं, ये किस काम का मेरा है। तो उसने उसको फेंक दिया, देख चला गया, किसी को दे दिया और किसी को। तो पार्वती देवी को भगवान बोले, शंकर जी बोले कि देखो इनके भाग्य में है ही नहीं, मैं कितने प्रयास करूँ ये भोग नहीं कर पाएगा वो। तो इसी प्रकार कभी कभी हमें दुर्भागा होते हैं, कितने भी हेल्प बाहर से आए, कितने भी हमें सहायता दें, हम कितने भी अनुकूल परिस्थिति हो, तब भी हमें सुजग हमसे छूट जाता है, मूर्ख है, अज्ञ है।
हरे
कृष्ण,
हरे कृष्ण,
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कलियुग में जो वर्णाश्रम जो व्यवस्था, ये वर्णाश्रम को पालन करना जरूरी है क्या? और एक प्रश्न है कि अगर ये कलियुग में नाम ही केवलम होता है तो वर्णाश्रम अगर ना पालन करे तो सिर्फ हरि नाम से हमारे क्या सदगति हो सकता है? हरे कृष्ण।
हम लोग इस कर्म में प्रभुपाद जी ने दैवी वर्णाश्रम के आधार पर सब प्लान प्रोग्राम रखे हैं। हम जो भी कर रहे हैं वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से कर रहे हैं। दैवी वर्णाश्रम मतलब है व्यक्ति अपने गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के हिसाब से सेवा करते हैं। किसका रुचि है कि वो मंदिर में पूजा अर्चना कर सकें, दूसरों को थोड़ा सा धर्म के बारे में बताएं, सिखाएं, ठीक है, पूजा अर्चना सिखाएं, तो ब्राह्मण श्रेणी के। कोई अगर उनके मैनेजमेंट में टैलेंट है तो फिर मैनेजमेंट करते हैं, तो कोई कुछ नहीं कर पाता, यानी ये सब है। दैवी वर्णाश्रम में कोई ऊंचा नीचा ऊपर नीचा नहीं है। वास्तव में जो वर्णाश्रम है दैवी वर्णाश्रम है, कि इसमें कोई ऊपर नीचा नहीं। कोई मान लो शूद्र है तो छोटे से छोटे कार्य कर रहा है, तो और कई ब्राह्मण मंदिर में घंटी हिला रहे, दोनों समान बराबर है भगवान के दृष्टि में, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण गर्व करता है कि मैंने देखो कितने उन्नत हूँ, मंदिर में घंटी बजा रहा हूँ, भगवान पूजा अर्चना कर रहा हूँ, और वो देख शूद्र बेचारा सफाई कर रहा है, तू ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। जैसे ही व्यक्ति में इस प्रकार घमंड आता है तो ब्राह्मण नहीं हो सकता है, उसका अधिकार नहीं है पूजा अर्चना करने का, दूसरों को ज्ञान देने का। यानी ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र इनमें कोई टकराव नहीं है, अपने ये चॉइस है, अपने गुण के अनुसार एक कार्य आप चुनना है। कोई भी प्रभुपाद ने इसी प्रकार व्यवस्था की है इस्कन में, दुनिया भर में जिसके पास जिस प्रकार गुण है उस गुण के अनुसार वो इस प्रकार सेवा करते हैं। ठीक है, यहीं पर रखते हैं, समय हो चुका है। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।